أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج صبح میں مجھے ایک اطلاع ملی ہے ایک اسٹوڈنٹ کی جو کینیڈا سے تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. انہا للہ و انہا الیہ راجعون. ان کی گروپ چارج نے ان کے بارے میں بہت ہی پیاری باتیں کی ہیں، جو گواہیاں ہیں ان کے لیے کہ وہ کتنی اچھی اسٹوڈنٹ تھیں، ماشاءاللہ کتنی ڈیڈیکیٹڈ تھیں اور کس طرح سے وہ نیکیوں میں آگے دوڑنے والی تھیں. یہ چیزیں ہم سب کے لیے ایک ویک اپ کال ہوتی ہیں. بہت سارے کام ہم یہ سوچ کے چھوڑتے چلے جاتے ہیں، یا بعض گناہوں کو یہ سوچ کے چھوڑنا مشکل سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے، کل اور کل اور کل. اور یہ کل کرتے کرتے ایک دن جانے کا وقت آ جاتا ہے. تو کسی نیکی کو بھی یہ سوچ کے نہ ٹالیے کہ پھر کر لوں گی، اور کسی گناہ کو بھی یہ سوچ کے نہ کرتے جائیے کہ کل چھوڑ دوں گی، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کب اس کی واپسی کا وقت آ جائے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک بات فرمائی ہے، فرمایا بلا من کسب سیئتا، جس نے کمائی کوئی بھی برائی، ایک برائی سیئہ واحد ہے، کوئی ایک برائی، لیکن وہ برائی کیا تھی، وہ گناہ کیا تھا کہ وہ احاطت بھی خطیئتہ، کہ اس کی اس برائی نے، اس گناہ نے اس کو گھیر لیا تھا، یعنی وہ ساری زندگی وہی کرتا رہا تھا، وہ گناہ اس کا پارٹ آف لائف بن گیا تھا، وہ اس کو چھوڑ نہیں پاتا یا اس کو کرتا چلا جاتا ہے ڈٹائی کے ساتھ، اور اسی پہ رہتا ہے مرتے دم تک. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو یہ آگ کے ساتھی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی انسان کو کوئی ایک برائی بھی ڈبو سکتی ہے، یہ سوچ کے گناہ نہ کرتے جائیں کہ میں اتنی نیکیاں بھی تو کر رہی ہوں، تو کیا ہوا اگر میں نے یہ ایک کام کر لیا. جیسے کچھ لوگ کسی ایک گناہ کے اوپر ڈھیٹ بن کے کار بند رہتے ہیں، وہ اس کو چھوڑنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں. نہیں نہیں میرے لیے بڑا مشکل ہے، نہیں یہ چیز نہیں میں چھوڑ سکتی، بس یہ کام نہیں میں چھوڑ سکتی. یعنی ہم منہ سے بعض دفعہ بولتے ہیں کہ ہم سے نہیں یہ چھوڑا جاتا، حالانکہ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں، 81 نمبر آیت ہے پہلے ہی پارے میں، کہ جس نے کمائی کوئی ایک برائی بھی اور پھر وہ اس کا لائف سٹائل بن گئی، اس نے اس کو چھوڑا نہیں، تو اس کا انجام کیا ہے. تو کبھی جرت نہیں کرنی اللہ کے آگے کہ کوئی گناہ ایسا ہے جس کو ڈھیٹ بن کے کرتے ہی چلے جائیں اور چھوڑے ہی نہ، اور کبھی سوچیں بھی نہ چھوڑنے کا، کیونکہ ہم نے دماغ میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، ایسے میں کیسے رہ سکتی ہوں. تو اللہ کی نافرمانی میں دلیر نہیں ہونا. جہاں آج کل ہم نیکیاں کرنے میں دوڑ رہے ہیں، وہاں پہ برائیوں سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ برائیاں وہ ہیں، گناہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے. ایک طرف ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوڑیں لگائیں اور دوسری طرف ساتھ ساتھ اس کی ناراضگی کے لیے کمر باندھے رہیں، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. آپ خود سوچیں کہ ایک طرف آپ کسی بھی برتن میں کچھ اچھا ڈال رہے ہیں، مثلاً پانی ڈال رہے ہیں، اور اس کے اندر سوراخ ہو، تو آپ اوپر سے ڈالتے جائیں گے وہ نیچے سے نکلتا جائے گا. यही हाल है कि जब हम नेकियां करते जाते हैं और साथ गुनाहों को छोड़ते नहीं हैं, उनको भी साथ साथ जारी रखते हैं, तो समझ लें कि आपने एक ऐसी जगह में अपने आमाल डाले कि साथ साथ निकलते जा रहे हैं। हम कितनी मेहनत करते हैं ना इन नेकियों को जमा करने के लिए, आसान तो नहीं होता। हर एक को वक्त लगाना पड़ता है, एफर्ट लगानी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, तो उसके बाद अल्लाह ना करे वो जाया हो जाए तो क्या होगा। आजकल वो रातें चल रही हैं जिनमें अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नुम से आजाद कर रहे हैं। हमारी दुआ भी यही है, हमारी ख्वाहिश भी यही है कि अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल फरमा दे जिनको वो जहन्नुम से आजाद कर दे, जिनके लिए परवाना ये जारी हो जाए कि फलां फलां को मैंने जहन्नुम से आजाद कर दिया। मगर याद रखें, ख्वाहिश करना दुआ करना काफी नहीं है जब तक दवा ना हो। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं, हम दुनिया में कोई भी बीमारी हो, कोई भी चीज हो, हम कहते हैं दुआ तो करो साथ दवा भी करो। कोई इम्तिहान है, कोई भी काम होता है, तो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ जाते कि सिर्फ दुआएं ही कर रहे हैं, ना इम्तिहान की तैयारी की, ना उसके लिए कोई एफर्ट की। इसी तरह बीमार है कोई तो सिर्फ दुआएं नहीं करते, हम साथ दवा भी देते हैं उसको। लेकिन क्या बात है कि जहन्नुम से बचने के लिए सिर्फ दुआओं को काफी समझते हैं और दवा कुछ नहीं है। ये नहीं सोचते कि इसकी दवा भी करनी जरूरी है, ये नहीं सोचते कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि सिर्फ मैं दुआएं करती जाऊं अल्लाह जहन्नुम से बचा ले और फिर अपने काम वही जारी रखूं। आज भी जिस दिल की बीमारी की हम बात करने वाले हैं, ये वो बीमारी है जो नेकियों को चाट जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बताया है कि ये नेकियों को ऐसे खा लेती है ये बीमारी जैसे कि आग सूखी लकड़ी को खा लेती है। देखिए आप, आग लगे सूखी लकड़ी को तो क्या बचता है उसका, कुछ भी नहीं। इसी तरह ये बीमारी वो है जो नेकियों का ऐसे सफाया कर देती है। और ये बीमारी आजकल इतनी कॉमन है, इतनी कॉमन है, इसको कोई ज्यादा बड़ी चीज कोई समझता ही नहीं। इसलिए इसकी तरफ बहुत जरूरी है कि हम अपनी तवज्जो करें। और ये पहली बीमारी है जो शुरू हुई जब इंसान पैदा हुआ, और सबसे पहले ये बीमारी शैतान को लगी थी कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि आदम को सजदा करने को कहा गया, इनको इतनी अहमियत क्यों मिल गई, इनको मुझसे ज्यादा क्यों मिल गई। और इसी के लिए हम दुआ भी करते हैं, मिन शर्रे हासिदिन इदा हसद। तो ये हसद की बीमारी है कि अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगती हूँ हासिद के हसद से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर साहिब नेमत हसद किया जाता है, जिसके पास भी कोई नेमत होती ना कोई हसद करने वाला उससे पैदा हो जाता है। किसी के पास औलाद की नेमत होगी तो कोई और होगा जो उसकी औलाद को देख के हसद करेगा, किसी के पास कोई माल ज्यादा होगा तो उसको देख के लोग हसद करने लगते हैं, किसी के पास कोई बड़ी गाड़ी बड़ा घर है तो उसके ऊपर हसद करने लगते हैं। तो हसद से नेकियां खत्म हो जाती हैं। ये जो हम मेहनतें करने लगे हुए हैं, हमने कल ही बात की थी ना उन सहाबी की कि क्या वो ऐसा अमल करते थे, कोई ऐसी बड़ी बड़ी रातों को जागने वाली नेकियां, या रात भर कुरान पढ़ रहे हैं, या तहज्जुदों में खड़े हुए हैं और खड़े हुए हैं, और इस किस्म की नहीं थी उनकी नेकी। क्या थी? अपने दिल को साफ करना। वो फरमाते हैं कि किसी को कोई भी, किसी मुसलमान को कोई भी नेमत मिल जाए, मेरे दिल में उसके लिए कोई कोई कीना नहीं आता, साफ करके सोते थे। तो इस किस्म की नेकियों की तरफ ना हमारी तवज्जो नहीं जाती, ये भी नेकी है। और किसी की नेमत को देख के बहुत ही कम लोग हैं जो खुश होते हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इसको क्यों मिल गया, और इसी वजह से ये नेकियों को खत्म कर देता है, क्योंकि इंसान चाहता है कि जो दूसरे को नेमत मिली है ना वो हजम नहीं होती उसको। वो कोई भी नेमत हो, घर है, जॉब है, उसकी कोई प्रमोशन है, किसी की शादी कहीं ऐसी जगह हो गई है, तो कोई समझता है कि देखो ये औरत तो इस काबिल ही नहीं थी, इसको इतना अच्छा शौहर मिल गया, इसको इतना अच्छा घर मिल गया, इसकी इतनी अच्छी जगह शादी हो गई, तो ये तो नहीं इसको मिलनी चाहिए थी। अब ये बताएं कि इसका नेकियां खत्म होने से क्या ताल्लुक है? ये ताल्लुक है कि मुनाइम कौन है? अल्लाह ताला है ना मुनाइम, नेमत देने वाला, ये अल्लाह ताला का नाम है। जब अल्लाह ताला किसी को नेमत देता है और आप उसके ऊपर नाराज होते हैं, तो बेसिकली आप अल्लाह के फैसले पर नाराज हो रहे हैं कि अल्लाह ने सही फैसला नहीं किया, नाउजु बिल्ला, कि इसको ये चीज दे दी, और आप समझते हैं कि इसको मिलनी नहीं चाहिए थी। तो क्या हम अल्लाह की हिकमत पे शक कर रहे हैं? क्या हम उसकी हिकमत को क्वेश्चन करते हैं? क्या उसको नहीं पता किसको क्या देना? तो जहां पे कीना भी आता है ना, वहां पे भी हसद में वो तब्दील हो जाता है। जब दिल के अंदर कीना होता है, तो फिर अब हसद खुद बहुत आ जाता है कि उसको क्यों मिल गई, वो क्यों वहां तक पहुंच गया, उस पोजीशन तक, उसको क्यों ऐसा घर मिला। इसका एक इलाज ये है कि अगर आपको पता है कि मेरे अंदर ये हसद की बीमारी है, तो ज्यादा लोगों की टो ना रखें, ज्यादा लोगों के हालात मालूम ना करते फिरे, क्योंकि पता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होना। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हासिद मेरी नेमत का दुश्मन, मेरे फैसले से नाराज होता है और बंदों में मेरी तकसीम पर खुश नहीं होता, तो फिर ये नेकियों को खाएगा ही ना। जो अल्लाह के फैसले पे राजी नहीं है, जो अल्लाह की नेमत का दुश्मन है, अल्लाह उससे कैसे राजी होगा। इब्ने सीरीन कहते हैं कि मैंने किसी पर भी कभी दुनियावी उमूर में हसद नहीं किया। क्यों? इसलिए कि अगर वो जन्नती है, तो मैं किसी दुनियावी काम में हसद क्यों करूं? वो तो जन्नत की तरफ जा रहा है, तो मेरा हसद करने का फिर क्या यानी वो बनता है। और अगर वो जहन्नमी है, तो मैं उसके किसी दुनियावी काम पर क्यों हसद करूं? वो तो जहन्नुम की तरफ ही जा रहा है। तो अब जिससे हसद होता है, फिर क्या इंसान की हालत होती है कि उसके खिलाफ बोलने लगता है, फिर उसके साथ दुश्मनी रखने लगता है। तो जब दिल करे ना कि मैं उसके खिलाफ बोलूं, तो अपने आप को रोक दे, ये इसका इलाज है। उसकी कोई अच्छी बात बयान करें, अपने आप पे जबर करके चाहे करनी पड़े, लेकिन उसकी कोई अच्छी बात बताएं। देखिए, हासिद दूसरे का तो बाद में नुकसान करता है, सबसे पहले तो अपना करता है ना। उसकी एक तो नेकियां चली गई, नंबर टू वो बेचैन रहता है, डिप्रेस रहता है, उसको कभी सुकून नहीं मिलता। हाय, सबको ये मिल गया, देखो ना किसी और के साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ क्यों हो गया? उसको उसका तो नहीं बच्चा बीमार हुआ, उसको तो नहीं ये बीमारी लगी, उसकी तो नहीं जॉब चली गई। अब उसको ये दिल करता है कि दूसरे को भी ना कुछ मिले, उसकी भी वही हालत हो जाए, कि वो भी उसका डाउनफॉल हो जाए। अगर देखें तो ये कितनी आम है बीमारी। अब इंसान अब गम के अंदर खुद घुला चला जाता है, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं ना हो रहा। देखो तो जरा उसको, वो तो इस काबिल भी नहीं थी, और देखो उसको कैसा घर मिल गया, इतना पैसा मिल गया, ऐश कर रही है। अब ये क्या है? हसद है। तो अक्सर हम रश्क नहीं कर रहे होते, हसद कर रहे होते हैं। रश्क क्या चीज होती है? कि अल्लाह इसके पास ये नेमत है, अल्लाह मुझे भी अता फरमा, ऐसी नेमत मुझे भी दे। और हसद क्या चीज होती है? कि दिल बैठ जाता है। अब उसकी चीज देखिए ना, एकदम आपको खुद दिल में महसूस होगा कि आपका दिल खुश नहीं हो रहा, बिल्कुल उदास हो गया, कि इसको क्यों मिला, इसको कैसे मिल गया, इसको तो नहीं मिलना चाहिए था। जब भी ऐसी बात आए, समझ लें कि हसद आ रहा है अंदर। मसलन आपकी कोई करीबी दोस्त है, कजन है, कोई भी बहन भाइयों में से भी कोई हो सकता है, आप देखते हैं कि उसको बड़ी तरक्की मिलने शुरू हो गई है, वो तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, या उसको कोई विरासत में कोई बड़ा माल मिल गया है, या कुछ भी ऐसा कुछ को प्रमोशन मिल गई है, या बड़ा कोई ओहदा मिल गया है, या उसको उसको लोग बहुत पूछने लगे हैं, उसकी बड़ी कदर करने शुरू हो गए, उसके आगे पीछे लोग फिर रहे हैं, तो क्या एकदम दिल की हालत बदल जाती है कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा, अपने दिल के अंदर कुछ होने लगा है कि क्यों इसको, क्यों ये सब कुछ मिल रहा है, क्या है ये, एक आम सी इंसान है मेरी तरह की है, और इसको ये सारा कुछ। असल में क्या होता है कि इंसान का नफ्स जो है ना बुलंदी चाहता है, वो नहीं चाहता कि किसी और को जो उसके जैसा है वो उससे ऊपर चला जाए। तो जब वो ऊपर चला जाता है ना, तो फिर इंसान को बड़ा बुरा गुजरता है, ये बात शाख गुजरती है, जैसे शैतान था उसके यही हुआ ना कि वो अपने लिए बुलंदी चाहता था, लेकिन जब किसी और को बुलंदी मिलने लगी तो उससे नहीं बर्दाश्त हो सका। तो तब इंसान का भी ये जी चाहता है जब वो हसद में मुबतला होता है कि जो कुछ इसको मिला है ना बस अब इसके पास ना रहे, इससे छिन जाए, वो ये भी मेरे बराबर ही आ जाए। तो देख लें बाज दफा हम इस बीमारी को समझ नहीं रहे होते, ये बीमारी अंदर ही अंदर हमें गमगीन रख रही होती है और हमें पता ही नहीं होता कि हमें ये बीमारी लगी हुई है। तो इस बीमारी को क्यों निकालना है हमने, क्योंकि इसकी वजह से हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। क्या कभी किसी की चीजें देख के दिल खुश होता है कि शुक्र है इसको मिल गया, बहुत अच्छा हुआ, बड़ी खुशी हुई। तो इसका इलाज दुनिया से बेरग़बती भी है, जब दुनिया में टू मच इंसान का दिल लगा होता है ना, तो फिर ये चीज़ें बहुत बॉदर करती हैं कि क्यों किसी को मिल गया। जब दुनिया से दिल बेरग़बत होगा ना, दुनिया का लालच नहीं होगा, तो फिर ये चीज़ें बॉदर नहीं करती। तो हमें अपना इलाज याद रखिएगा खुद करना है, कोई और नहीं कर सकता, कौन मेरे दिल तक पहुंच सकता है और जाके ये सफाई कर सकता है, खुद करना है मुझे। तो इंशाअल्लाह ताला इस काम पर हमें लगना है, और जो अपने आप को सूरह शम्स में अल्लाह ताला ने 7 कसमें खा के फरमाया है ना, कद अफलाह मन जक्काहा, वो कामयाब हो गया जिसने तज़किया कर लिया, जिसने अपने आप को पाक कर लिया, वो कामयाब हो गया। कामयाबी चाहते हैं ना हम सब, इस रमजान में हमें कामयाबी मिल जाए, तो ये सफाई अंदर की करनी ही है, कोई और चारा नहीं है और कोई और नहीं करेगा। ये ना हो कि हम नेकियां करते रहें और दिलों के अंदर ये गंदगियां लेके फिरते रहें जो हमारी नेकियों को चाट जाए। अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। उम्मीद है आप लोग कुराने पाक को पढ़ रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, साथ साथ पिछले साल की तरह इस दफा भी हम इंशाअल्लाह कुराने करीम को 2 तरह से शुरू करेंगे, एक वैसे ही जो हम पढ़ते हैं और दूसरा अपनी नमाजों में। नमाजों में कैसे, तरावीह के लिए जब आप खड़े हों, कयाम के लिए आप जब खड़े हों, या दिन भर में जब भी आप कोई सुन्नत नफल पढ़ रहे हो तो आप कुराने पाक खोल के और वहां से पढ़ सकते हैं। इस तरह से एक कुराने पाक हमारा इंशाल्लाह नमाजों में मुकम्मल हो जाएगा और एक कुराने पाक जो हम वैसे रेगुलर पढ़ते हैं उस तरह से मुकम्मल हो जाएगा। तो 2 तरह से हमारे मुकम्मल हो जाएंगे कुराने पाक। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब्स करते हैं या उनकी और कुछ ऐसी मसरूफियात हैं, वो ना तो इतने नवाफिल पढ़ सकते हैं ना इतना ज़्यादा कुरान पाक पढ़ सकते हैं। तो एक कुरान तो सभी को पढ़ना है, कम से कम एक बार तो दौर सबको करना ज़रूरी है। तो अपना टाइम ऐसा बांधिए कि या तो सुबह में या रात में, चले वो एक ही कुरान अगर पढ़ रहे हैं तो तब भी कुछ को अपनी नमाज में पढ़ लें, कुछ को नमाज के बाहर पढ़ लें, और दूसरे कुराने पाक के अलावा भी जो लोग भी मसरूफ़ हैं, जो लोग भी ऐसी किसी चीज़ के अंदर हैं कि वो नहीं उतना बैठ के टिक के एक जगह पे काम कर सकते, वो जिक्र से तो अपनी ज़ुबान को तर रखें ना। और मैं इसीलिए अज़कार आपको बताती रहती हूँ, कई दफ़ा बहुत सारे जिक्र हमें भूल जाते हैं कि ये भी तो एक जिक्र था। आज का जो जिक्र है वो भी ऐसा ही जिक्र है जो बहुत हल्का है ज़ुबान पे, मगर बुखारी की हदीस है कि मीजान में बहुत भारी है और रहमान को बेहद महबूब है, यानी अल्लाह ताला को महबूब भी बहुत है, मीजान में भारी भी बहुत है, जुबान पे भारी नहीं है, जुबान पे बहुत हल्का है। तो ये कौन सा इतना आसान जिक्र है? सुबहान अल्लाह सबको आता है ना, सुबहान अल्लाह ही व बिहम्दिही, फिर से कहें सुबहान अल्लाह ही सुबहान अल्लाह العظيم, एक दफा सुबहान अल्लाह ही व बिहम्दिही, दूसरी दफा सुबहान अल्लाह العظيم। तो ये थोड़े से कलिमात हैं लेकिन वजनी बहुत है, तो मामूली ना समझिएगा। देखिए कितनी सारी नेकियां बिखरी पड़ी हैं हमारे सामने, जो मैं ये आपको जिक्र बताती हूँ, जो ये आपको दुआएं बताती हूँ, जो ये आपको करने के काम बताती हूँ, पास तो इतने आसान है ना। जैसे मसलन ये जिक्र, आप क्या मुझे ऐसी एफर्ट लग गई, कौन सी मैंने ऐसी मेहनत कर ली, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम, इसको कहने में मेरी कितनी देर लगी, सेकेंड्स। लेकिन जब मीजान में तुलेंगे तो कितने वजनी होंगे, फिर भी हम इनसे गफलत करें, फिर भी हम इनको ना करें, फिर भी सारा दिन इतनी फालतू फजूल बातें करते रहें जिनका कोई हासिल नहीं है, और इन कलिमात को कहने से गफलत रखें, तो ये तो बड़ी ही नादानी है। इसीलिए फिर इंसान को उस दिन हसरत होगी ना, काश मैं कह देती, काश मैं बोल देती, काश मैं ये तस्बीहात कर लेती, ये तो बहुत आसान थी। बहुत सारे लोग कितना कुछ ऐसे छोटा 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 करके, कितना जमा करके वहां पे पहुंचेंगे, और जो इससे गाफिल रहे वो उनको देख के कितनी हसरत करेंगे कि ये तो मैं भी कर सकती थी। लेकिन सिर्फ अपनी बस सुस्ती के अलग, या बस ध्यान ही नहीं है, सुस्ती भी इतनी बाज दफा नहीं होती, ध्यान ही नहीं है, बस ध्यान ही कहीं और लगे हैं। जब इस तरफ को ध्यान ही नहीं देंगे तो जो सुना सुबह सुना और उसके बाद सारा दिन भूल गए, याद ही नहीं आज क्या सुना था, आज प्रोग्राम बंद और चलो आज का तो पूरा हो गया, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। देखिए इसलिए इन अज़कार को हम जुबान पे जारी कर लें। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको इस महीने के हवाले से करनी है, वो ये कभी ना भूलिएगा कि ये सबर का महीना है, सबर का, रोज़ा सबर सिखाता है। ये ना हो कि हम रोजे में बच्चों पे चीखते फिर रहे हैं या शोहर से झगड़े और बहसें करने से बाज नहीं आए, अगर इस महीने में भी हमने सबर ना सीखा तो पता नहीं फिर कब सीखेंगे, फिर तो कभी नहीं सीख सकते। तो रोज़ा है ही ट्रेनिंग सबर की, लिहाजा इस महीने में अपनी जुबान को भी सिखाइए कि वो चीखना चिल्लाना या बहसें करना, खास तौर पे रोजे में इन चीजों को हम छोड़ दें, इन चीजों से बाज रहें। तो हमने इंशाअल्लाह ताला आवाजें ऊंची नहीं करनी घर में, चीखना चिल्लाना नहीं है, झगड़े नहीं करने, बहसें नहीं करनी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कोई भी झगड़े तो उसको भी आगे से क्या कह दो कि मैं रोजे से हूं, खुद झगड़ना तो दूर की बात है, कोई और भी अगर झगड़े ना तो फिर हमने आगे से ये जवाब देना। आज की जो दुआ है इतनी बेहतरीन दुआ है, इतनी जबरदस्त दुआ है, मैं कहती हूँ कि ये हमारी इतनी बड़ी जरूरत है, क्योंकि एक तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी इस दुआ के बारे में फरमा दिया कि अल्लाह ताला से ये मांगो, जब तुम्हें ये मिल जाए तो तुमने फलाह पा ली, यानी तुम कामयाब हो, क्योंकि ये इतनी प्यारी दुआ है। यानी जिसने ये मांग ली ना, जिसको ये मिल गई दुआ, उसकी पूरी हो गई, उसने फलाह पा ली। तो वो दुआ है क्या कि जो कामयाबी की जमानत है? तो दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफियत फिद दुनिया वल आखिरा, कि अल्लाह मैं तुझसे आफियत मांगती हूँ दुनिया में भी और आखिरत में भी। आफियत क्या चीज होती है? यानी मेरे यहाँ पे भी सारे ही काम ठीक हो, मेरे अपने भी, मुझे कोई बीमारी ना लगे, मेरे बच्चे भी सेहतमंद रहे, इनको कामयाबियां भी मिले, मैं भी हर तरह से ठीक ठाक रहूं, मेरा माल भी सही रहे, मेरे रोजगार के भी सारी चीजें मामला दुरुस्त रहे, मेरी और जिंदगी के, खानदान के, ईमान के, ये सब चीजें मेरी सही रहे, कि दुनिया की आफियत और आखरत की आफियत क्या, कि वहां पे भी मुझे को सजा ना मिले, आग से भी बच जाऊं, पुल से रात पे भी मुझे जल्दी तेजी से गुजर जाऊं, मेरे आमाल नामे में भी नेकियां बढ़ जाएं, मुझसे अल्लाह राजी भी हो जाए, मुझे वहां पे भी कामयाबी मिल जाए, सारे मेरे मामलात वहां के भी ठीक रहें, ये आफियत है। ठीक है, तो इसमें जब आपने दुनिया और आखरत की आफियत मांग ली, तो हम इतने मोहताज है ना, हमारी मोहताजी की हद ही नहीं है, हद ही नहीं है। हमें देखिए यहाँ पे भी तो हर चीज ही चाहिए, दुनिया की भी हर जरूरत है कि हमारी वो अल्लाह से ही हमने सवाल करना है, और हर शर से भी हमें बचाव के लिए अल्लाह की पनाह चाहिए, हम अल्लाह से ही मांगते हैं, इस शर से भी बचा ले, उस शर से भी बचा ले, उससे भी बचा ले, ये खैर भी मेरी तरफ आ जाए, वो खैर भी मुझे मिल जाए, ये सब आफियत है। ठीक है, और आखरत में भी हम मोहताज हैं, हमारी मोहताजी कहीं खत्म थोड़ी होनी है, कब्र में भी हम मोहताज हैं, मौत के वक्त भी हम मोहताज हैं, ये अल्लाह मौत जान भी आसानी से निकल जाए, कब्र के अंदर भी कोई भी ना होगा, अल्लाह वहां पे भी आफियत चाहिए, हशर के मैदान में भी आफियत चाहिए, जब आमाल नामा पकड़ाया जा रहा हो हाथों में तब भी आफियत चाहिए, जब आमाल तुल रहे हो तब भी आफियत चाहिए, वो आफियत ही आफियत चाहिए ना। और फिर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफवा वल आफियत, ए अल्लाह मैं सवाल करती हूँ तुझसे गुनाहों की माफी का, आफू और आफियत का, फिर से आफियत मांगी, आफियत का कहाँ 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 मुझे आफियत चाहिए, फी दीनी व दुनियाया व अहली व माली, अल्लाह दीन में भी चाहिए, मेरी दुनिया के भी कामों में चाहिए, अल्लाह ताला मेरे अहल में भी, मेरी फैमिली में भी मुझे आफियत चाहिए, कितनी दुआएं हमारी तो फैमिली रिलेटेड ही होती हैं, बच्चों से रिलेटेड होती हैं, वह माली और माल में भी आफियत चाहिए, अल्लाह मस्तुर आउराती, ए अल्लाह ढांप ले मेरे ऐब, मेरे ऐबों को ढांप ले अल्लाह, मेरे ऐबों की तशहीर ना हो दुनिया में, बातें ना हो, वह आमिन रहू आती, और अल्लाह मुझे उन चीजों से बेखौफ कर दे, बेफिक्र कर दे जो मुझे डराने वाली है, और चाहे वो फकर व फाका है, चाहे वो कुफर है, चाहे शिर्क है, चाहे और कोई भी चीजें हैं जिनसे इंसान डरता है, कोई दुश्मन है, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन बैनी यदैय व मिन खल्फी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फौकी व उज़्बी अज़मतिका नऊ तआला मिन तहती, और फिर हर तरफ से आपने सामने से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से अल्लाह मेरी हिफाजत कर, और मैं तेरी पनाह लेती हूँ, तेरी अजमत की पनाह लेती हूँ अल्लाह इस चीज़ से कि मैं हलाक की जाऊँ नीचे से, तो हर डायरेक्शन से अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करना, कितनी प्यारी दुआ है, हमें हिफाजत भी मिल जाए, हमें आफियत भी मिल जाए, दुनिया में भी आखरत में भी, हमारे घर वाले भी आफियत में रहे, हमारे माल भी, हमारे दीन भी, हमारी दुनिया भी, सब चीजों की इसमें बात आ गई। तो इस दुआ को आप जरूर मांगिए, क्योंकि इसके अंदर फलाह है हमारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला से दुनिया और आखरत में दरगुजर और आफियत मांगो, जब तुम्हें दुनिया और आखरत में आफियत मिल गई तो तुमने फलाह पा ली। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारी जो स्टूडेंट दुनिया से चली गई हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा दे और उनसे राजी हो जाए, रमज़ान में वो दुनिया से गई हैं अल्लाह ताला हम उनके दर्जात को बुलंद करते। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।